सुबह के 8 बज रहे थे, ऑफिस आज शुरू होने वाले थे। कायरव की कल रात से ही इनाया से बात नहीं हुई थी। जिस तरह वो उसे बिना बताए घर से निकला था, उसे फिकर भी हो रही थी। पुलिस के कॉन्फ्रेंस के बाद अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। कंपनी की लीगल और पीआर टीम की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दी गई थी। अब सब कुछ कायरव के अकॉर्डिंग चल रहा था, इसलिए वो शांत था और घर जाने ही वाला था कि उसके कैबिन का डोर खुला और एक जोड़ी कदमों ने कैबिन में कदम रखा। सामने से आते शख्स को देखकर कायरव इस कदर हैरान था कि अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर धनराज, कायरव के होंठ हिले और धीमी आवाज बाहर आई। उन्हें यहां देखकर वो इतना भी हैरान नहीं था और शायद जानता था कि वो इस वक्त यहां क्यों आए हैं। सर प्लीज सिट, कायरव ने फॉर्मैलिटी निभाते हुए उन्हें सीट ऑफर की, क्योंकि रिस्पेक्ट तो अब बची नहीं थी। मिस्टर धनराज के माथे पर पड़ी सिलवटें, चेहरे पर चिंता और आंखों की लाली ये बताने के लिए काफी थीं कि वो कितने परेशान हैं। शायद रात ठीक से सोए भी नहीं थे, उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मिस्टर धनराज कायरव के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। कायरव ने अपनी चेयर पर बैठते हुए सवाल किया, कहिए सर, इतने टाइम बाद आज अचानक यहां कैसे आना हुआ? आने से पहले आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया? मिस्टर धनराज ने गौर से कायरव को देखा। सब जानकर भी कैसे अनजान बन रहा था, ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं यहां तुमसे कुछ पर्सनल बात करने आया हूं, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कायरव बेटा, तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच बहुत पुराना रिश्ता है। बिजनेस के अलावा भी दोनों खानदानों के बीच शुरुआत से काफी अच्छे संबंध रहे हैं, ये तो मैं भी जानता हूं। सालों से हमारी कंपनी हर इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को ही देती है और कई बार आपसे मुलाकात भी हुई है। वैसे आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कल डैड भी मुझे यही बता रहे थे कि कितना पुराना रिश्ता है हमारा आपसे। मिस्टर धनराज बहुत हिम्मत करके यहां आए थे, लेकिन कायरव का बिहेवियर देखकर अब उन्हें झिझक महसूस होने लगी। उन्होंने संकोच से सर झुकाते हुए कहा, कायरव बेटा, मैं यहां तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। तेज के खिलाफ जो तुमने केस किया है, उसे वापस ले लो। तुम तो जानते हो, तुम्हारी आंटी के बाद मैं उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए थोड़ा भटक गया है। उसके अलावा मेरा और कोई है भी नहीं। मैं समझाऊंगा उसे, वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी की जिंदगी में दखल नहीं देगा। सच, औलाद इंसान से क्या नहीं करवाती। मिस्टर धनराज उम्र में मिस्टर रायचंद से भी बड़े थे, गुरूर इतना कि कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। लेकिन आज बेटे ने ऐसी हरकत की कि उसे बचाने के लिए उसकी उम्र के लड़के के आगे सर झुकाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे। सोचते हुए कायरव को उन पर कुछ दया आई, लेकिन फिर इनाया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। चेहरा एकदम से कठोर हो गया। ये बात तो शायद आपने ठीक कही कि कहीं ना कहीं आपके ध्यान न देने की वजह से आज तेज ऐसा है, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि गलती एक या दो बार होती है, जो बार बार जानबूझकर किया जाए वो गुनाह होता है। मिस्टर धनराज की निगाहें उसके तरफ उठ गईं। कायरव के दिल की कड़वाहट उसके शब्दों में घुलने लगी। मैं मानता हूं कि आंटी के जाने के बाद उन्हें खोने के गम से उभरने के लिए शायद आपने खुद को बिजनेस में इतना बिजी कर लिया कि अपने इकलौते बेटे पर ध्यान नहीं दे पाए। ये आपकी गलती थी, क्योंकि आंटी के जाने के बाद तेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। आपका फर्ज था उसकी ठीक से परवरिश करके उसे एक अच्छा इंसान बनाना। लेकिन चलिए, आपसे ये गलती अनजाने में हुई तो इसे माफ किया जा सकता है। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से तेज गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन आप चाहते तो उसे सही रास्ते पर ला सकते थे। जब उसने पहली गलती की थी, तभी उसे उसका एहसास करवाते तो शायद वो तभी उस गलत रास्ते को छोड़ देता। लेकिन आपने क्या किया? बेटे के मुंह में उसकी हर गलती पर पर्दा डालते हुए उसे और बढ़ावा देते गए, उसके हर गुनाह को छुपाते गए। उसकी वजह से कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपके बेटे की हैवानियत का शिकार बनकर उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी आप तेज का साथ देते रहे। इनाया पहली लड़की थी जिसके साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, और आपने उसे सजा दिलाने की जगह इनाया की आवाज ही दबा दी। आपके बेटे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हर जगह उसे बदनाम कर दिया। जो गुनाह आपके बेटे ने किया, उसकी सजा वो इनोसेंट होकर भी भुगतती रही, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। तेज के लिए लड़कियां दिल बहलाने का जरिया बन गई। आपकी ही कंपनी में आपकी ही एम्प्लॉयज के साथ वो हर गलत काम करता रहा और आप उसे बढ़ावा देते रहे। आज अगर तेज जेल में है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह आप हैं। आप एक अच्छे बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन अच्छे इंसान और डैड बनने में बुरी तरह फेल हो गए। कायरव की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसने तल्ख लहजे में कहा, पहले मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि वो आप थे जिसने इनाया पर प्रेशर बनाकर उसे केस वापस लेने पर मजबूर किया, मेरे दिल से आपके लिए सारी इज्जत खत्म हो गई। कितने खुदगर्ज थे आप, आपको आपका बेटा दिखा लेकिन वो लड़की नहीं नजर आई जो उसकी हैवानियत का शिकार बनते बनते बची थी। आपने तेज को बचाया और उसने इनाया का जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनाया को बिना किसी गलती के इतना सब कुछ सहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके बेटे की वजह से। अगर तेज उसका गुनाहगार है तो उसके हर गुनाह में बराबर के हिस्सेदार आप भी हैं। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं, मेरे लिए जो गलत है वो गलत है। मैं इंसाफ को रिश्तों के तराजू पर नहीं तोलता। तेज ने गुनाह किए हैं तो उसे सजा भी जरूर मिलेगी। मिस्टर धनराज पहले ही बहुत परेशान थे। कायरव की बातें सुनकर उनका सर शर्मिंदगी से झुकता चला गया। उसके आखिरी शब्दों को सुनकर घबरा गए और चिंतित स्वर में बोले, कायरव ऐसा मत करो, तेज सुधर जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। अभी तक तो नहीं सुधरा या आपने समझाने की कोशिश ही नहीं की। वैसे मैं बता दूं कि शुरू में अगर आपने उसे समझाया होता, उसे उसके गुनाहों का एहसास होने दिया होता तो शायद सुधर भी जाता। लेकिन अब वो इस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है, अब वो नहीं सुधरेगा। उसे तो अपने गुनाहों का एहसास तक नहीं है। इतना गुरूर है अपनी पावर पर कि बिना किसी डर के हर तरह का गलत काम करता है। उसके इस गुरूर का टूटना जरूरी है, जो आपकी बातों से नहीं टूटेगा। उसके लिए उसे उसके गुनाहों का एहसास दिलाना होगा और वो तब होगा जब उसे सजा मिलेगी। मिस्टर धनराज के उतरे हुए चेहरे को देखकर कायरव ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, वैसे आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपकी बात मान लेता। नहीं करता तेज के साथ कुछ, अगर वो लौटकर मेरी वाइफ की जिंदगी में नहीं आया होता, हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की होती, इनाया को टारगेट करने की गलती नहीं की होती। लेकिन उसने जो किया, जो करने वाला था, उसके बाद उसे माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। वो सिर्फ इनाया ही नहीं, उन सब लड़कियों का गुनाहगार है और अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ गया है। मैं या आप अब कुछ नहीं कर सकते। कायरव ने साफ शब्दों में उन्हें अपना फैसला सुना दिया था। मिस्टर धनराज भी शायद समझ गए कि कायरव अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, यहां से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया था कि तेज आज जहां है उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। अगर वो गलत है तो उसका साथ देकर सही वो भी नहीं रहे और अब वक्त आ गया है उन दोनों को उनके गुनाहों की सजा मिलने का। तेज जेल में था और वो इतने बेबस और लाचार थे कि अपनी पावर और पहुंच का यूज करके भी उसे वहां से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। हर कोशिश करके हारने के बाद एक आखिरी उम्मीद लेकर यहां आए थे और वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी, यही उनकी सजा थी। मिस्टर धनराज बेहद मायूसी से उठे और निराशा से सर झुकाए। जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट भी गए।
कायरव कुछ देर पैर पर पैर चढ़ाए बैठा, भावहीन सा अपने कैबिन की डोर को देखता रहा जहां से अभी अभी मिस्टर धनराज गए थे। उनकी कही बातें, इनाया का बताया सच, तेज की हरकतें, सब उसके दिमाग में घूम रही थीं। वो क्या सोच रहा था और क्या करने वाला था, बस वही जानता था। कैबिन में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अचानक वहां फोन के रिंग की आवाज गूंजी। कायरव ने पॉकेट से फोन निकालकर देखा। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखते उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उसने बाकी सभी ख्यालों को परे झटका और कॉल रिसीव करते हुए कड़क अंदाज में बोला, टू बी कंटिन्यूड। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी शेयर करें।